بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم کتاب بحلول دانہ کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے. نمبر 8. بحلول کی اس کرامت نے ہارون کو فکر مند کر دیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ بحلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے معتقد بن جائے، کیونکہ اسے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے. اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں سے تمام خبریں پہنچاتے تھے، اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ایک شخص نے جرت کی. امان ہے، ہارون نے کہا. عالیجہ، اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک خول سا چڑھا رکھا ہے. وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے. ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے. ایک وزیر نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے. لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں. ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا ذل سبحانی. یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے. اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے. دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا. اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی. اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا. وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے. اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی تاگ میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے. وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے. کچھ مدت گزری، شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑی. اس نے یہودی سے قرض مانگا. وہ روپے دینے پر تیار تو ہو گیا لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقررہ پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا. سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی، اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سودا کر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی. اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے. وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے. یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا. قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی. لوگ بھی اس کے حال پر کڑتے تھے. کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کہا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گدڑی اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا، قاضی جی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو وہ اپنا اسا کھٹکھٹاتا وہ آگے بڑھا اور اب بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر، کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر قرض ادا نہ کر سکے تو اس پہ اختیار ہے کہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لیں؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا. پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا، کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا. تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے. اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی. بہلول نے بہت مزے سے کہا. یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. لوگ اشش کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے. بہت خوب، ہارون نے توصیفی انداز میں کہا. بہت دور کی کوڑی لایا بہلول. عالیجہ، اس کا دیوانہ दिमाग अक्सर दूर की कौड़ी लाता है। अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं बताऊं कि इसने एक बेवकूफ गुलाम को क्या सबक सिखाया। कोई दूसरा मुकर्रब बोला, बयान करो। हारून ने इजाज़त दी। चंद रोज़ हुए ये खाकसार कश्ती में बसरे गया। इसमें और लोगों के साथ बहलूल भी सवार था। अचानक एक सौदागर का गुलाम रोने और चिल्लाने लगा, खुदा के लिए मुझे कश्ती से उतारो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। खुदा के लिए इस कश्ती को वापस ले जाओ, समंदर की लहरें उससे उल्टा देंगी, हम सब डूब जाएंगे। तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता, कश्ती को रोको। उसे एक लम्हा भी करार नहीं आ रहा था और इसकी चीख और पुकार से कश्ती में सवार लोग बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ मुसाफिरों ने उसे तसल्ली देने की कोशिश भी की, हर तरह से समझाया बुझाया, लेकिन इसे किसी पल चैन नहीं आया था। बहलूल ने गुलाम के मालिक से कहा, जनाब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके गुलाम का खौफ दूर कर दूँ, बेचारा बहुत परेशान है। नेकी और पूछ भला इससे बेहतर और क्या बात होगी, इसका कोई बंदोबस्त करो, ये खुद तो परेशान है ही। इसकी चीख और पुकार हमारे दिमाग पर भी हथौड़े की तरह बरस रही है, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे, इसे पुरसकून कर दो। सौदागर ने जल्दी से कहा। बाकी लोगों ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। बहलूल ने करीब बैठे हुए लोगों से कहा, भाइयों तुम्हें जहमत होगी, ज़रा इस बेचारे गुलाम को उठाकर समंदर में तीन चार डुबकियाँ तो दिलवा दो। लोग हंस पड़े, कुछ ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा, गुलाम और ज़्यादा चीख और पुकार करने लगा। बहलूल बोला, भाइयों जब इसके मालिक ने इजाज़त दे दी है तो तुम्हें क्यों तामुल है, शाबाश, उठो इसको समंदर में दो चार गोते दिलवा दो, चलो बिस्मिल्लाह करो। सौदागर ने इसकी ताईद की तो गुलाम के करीब बैठे हुए लोगों ने उसको पकड़ लिया। गुलाम ने बावेला मचाकर आसमान सर पर उठा लिया, बहुत हाथ पांव मारे मगर इसकी एक नहीं चली। कुछ आदमियों ने इसे मजबूती से पकड़ा और समंदर में गोते देने लगे। वो बचाओ बचाओ का शोर मचाने लगा। चंद लम्हों बाद बहलूल ने कहा, यार इस बेचारे पर तरस खाओ और अब बस करो, इसका इलाज हो गया है। मुसाफिरों ने उसे वापस खींच लिया। इसने हाँपते कांपते अपने नाक और मुंह से पानी निकाला, बाल पोंछे और एक कोने में बिल्कुल चुप बैठ रहा। बाकी मुसाफिरों ने हैरत से इसकी इस खामोशी को देखा और बहलूल से सवाल किया कि उसने ये नुस्खा क्यों कर ईजाद किया जो इस कदर कारगर साबित हुआ। बहलूल ने हंसकर कहा, जवाब दिया, इस बेचारे को कश्ती के आराम की कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था। समंदर में गोते खाकर इसे ये नुक्ता समझ में आ गया कि कश्ती समंदर के मुकाबले में कितनी महफूज है। हारून मुस्कुराया, इस मस्खरे का भी कोई ऐसा ही इलाज करना पड़ेगा जो दीवाना बनकर दूसरों को दीवाना बनाता फिरता है। जिल्ले इलाही ने बजा फरमाया, हमारा अंदाज़ा भी यही है कि वो दीवाना नहीं है बल्कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी हरकतें करता है। कुछ रोज़ पहले तो हमें इसका सबूत भी मिल गया कि वो दीवाना पागल और दानिशमंद में तेज तमीज करने की सलाहियत रखता है। एक शख्स ने कहा, वो किस तरह, बयान करो। हारून ने मुजस्सिस लहजे में कहा, जब बहलूल को पागलपन का दौरा पड़ा था तो एक ताजिर ने गालबन फाल लेने की गर्ज से बहलूल से पूछा, हजरत शेख बहलूल साहब मेहरबानी फरमा कर मुझे मशवरा दें कि मैं कौन सा माल खरीदूँ जो नफा बख्श हो। बहलूल ने बड़े इत्मीनान से कह दिया, भाई तुम लोहा और रुई खरीद लो, अल्लाह ताला बरकत देगा। दीवानों और दरवेशों की बातों से अक्सर लोग फाल लेते ही हैं। इसने भी बहलूल की बात पर अमल किया, इत्तेफाकन उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। दो ढाई माह बाद उसने फिर माल खरीदने का इरादा किया तो सोचा कि फिर बहलूल की बातों से फाल ली जाए। वो इसके पास आया, ये अपनी इन दीवानी हरकतों में लगा हुआ था। ताजिर ने उसे बुलाया तो अपने असा पर सवार होकर टक टक करता आया। उसने इसकी हालत देखकर कहीं कह दिया, ओ पागल बहलूल, ज़रा ये तो बता कि इस बार मैं तिजारत के लिए कौन सा माल खरीदूँ। बहलूल ने फौरन बोला, जा भाई प्याज और तरबूज खरीद ले। इस अहमक ने बगैर सोचे समझे अपना तमाम सरमाया प्याज और तरबूज खरीदने में लगा दिया। फसल के दिनों में तो वैसे ही इनकी मांग नहीं थी, कुछ दिन जखीरा किए तो वो सड़ गए और इसे खसारा उठाना पड़ा। वो गुस्से में भरा हुआ बहलूल के पास आया और बोला, ओ बहलूल, तूने मुझे कैसा मशवरा दिया था कि मेरा सारा सरमाया डूब गया है, हालांकि पिछली बार तेरे मशवरे से मुझे बहुत मुनाफा हुआ था। बहलूल ने जवाब दिया, हजरत पहले रोज़ जब आपने मुझसे मशवरा मांगा था तो जनाब शेख बहलूल कहकर मुझे आवाज़ दी थी, गोया आपने मुझे दानिशमंद समझकर मेरे वक़ार का ख्याल रखा। मैंने भी दानिशमंदी से मशवरा दिया, लेकिन दूसरी बार आपको याद है कि आपने क्या गौर अफशानी फरमाई थी। नहीं, ताजिर को याद नहीं था। आपने फरमाया था, ओ पागल बहलूल, क्योंकि आपने मुझे पागल समझकर मुखातिब किया था, इसलिए मैंने भी आपको पागलपन से ही मशवरा दिया था। बहुत खूब, हारून महजूज हुआ। ये तो होशमंद दीवाना है, इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आपका फरमाना बजा, लेकिन हुजूर इसकी इस दीवानगी ने उसे आवाम से बहुत करीब कर दिया है। ये मुफ्त में इनकी मुश्किलें हल करता है और गरीब के साथ उठकर चल पड़ता है, और इस पर ज़रा एहतियात से हाथ डालना होगा। वज़ीर ने इजहार ख्याल किया, हूँ तो फिर तुम ही बताओ कि इस पर कौन सी फर्द जुर्म आयद की जाए कि अवाम में कोई रद्द अमल ना हो। हारून ने पूछा, जान की अमान पाऊँ तो एक तजवीज़ पेश करूँ। एक मुशीर ने मोहताद लहजे में कहा, अमान है। हारून ने शाहाना नकूवत से गोया एहसान किया। इस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो अम्बिया सलत की तौहीन करता है, इसलिए इस्लाम से खारिज हो गया और वाजिबुल कत्ल है। इसने बताया, कोई सबूत? हारून ने रोबे शाही से कहा, इसका सबूत भी मौजूद है और गवाह भी। मुशीर बोला, बयान करो। हारून ने तहकमाना शान से कहा, कुछ लोगों ने बहलोल से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा कि वो किस कौम के पैगम्बर थे, तो वो कहने लगा कि इनके नाम से ज़ाहिर है कि वो उबाशों और अय्याशों के पैगम्बर थे। लोग इसके पीछे पड़ गए, तो पैगंबर खुदा की शान में पड़ गए, तू पैगंबर खुदा की शान में गुस्ताखी करता है। तो इसने ये कहकर अपनी जान बचाई कि मैंने पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं की, मैंने तो उनकी कौम की बात की है, इसकी तायद कुरान पाक में मौजूद है। हारून ज़ेर लब मुस्कुराया और बोला, नहीं नहीं, उस पर यह इल्ज़ाम साबित नहीं किया जा सकता। ये दीवाना बड़ा हाजिर जवाब है और दूसरों को लाजवाब करने का हुनर खूब जानता है। आलिजा ऐसा वैसा हाजिर जवाब, इसने तो आपके वज़ीर मुमलिकत का ऐसा नाक़ता बंद किया था कि वो मौसूब बगले झाँकने लगे थे, हालांकि वो ख़ुद को बहुत हाजिर दिमाग समझते हैं। एक मुशीर ने वज़ीर मुमलिकत का तस्किरा किया जो उस वक्त महफिल में मौजूद नहीं थे। वो किस्सा क्या है, बयान किया जाए? हारून ने इजाज़त दी। आलिजा हुआ यूँ कि एक रोज़ बालूल यहाँ आया तो इत्तफाक़न वज़ीर मुमलिकत से मुलाकात हो गई। उन्होंने मज़ाहन बालूल से कहा, बालूल मुबारक हो, अभी ये भी हुक्म आया कि खलीफा ने तुझे कुत्तों, मुर्गों और सुअरों का अमीर और हाकिम बना दिया है। बहलोल ने एक लम्हा तवक्कुफ नहीं किया और बड़े रोब से बोला, खबरदार, अब हमारे हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना करना, इस हुक्म से तू भी मेरी रईयत में हो गया है। इसने ये बात इतनी बेसाख्ती से कही कि वहाँ मौजूद कोई भी अपनी हंसी पर काबू ना पा सका और वज़ीर मुमलिकत को वहाँ से टलते ही बनी। हारून हंसने लगा तो इसके खुशगवार मिजाज से शह पाकर मुशीर के किसी हासिद ने मौका गनीमत जानकर कहा, आलिजा, मुशीर साहब ने वज़ीर मुमलिकत का वाक़ तो बयान कर दिया, लेकिन ज़रा इनसे भी तो पूछिए कि पिछले हफ्ते हजरत बहलूल ने इनके साथ क्या किया है। हारून ने इसकी जानिब देखा, बोलो क्या क्या हुआ था। वह खफीफ सा हो गया और इस शख्स पर कहर आलूद निगाह डालकर बोला, जिल्ले इलाही, हासिदों का काम दूसरों को नीचा दिखाना है। तुमने वज़ीर मुमलिकत के साथ जो कुछ किया है, इसका निशाना तुम्हारी अपनी ज़ात भी बन गई है, फ़ौरन वो किस्सा बयान करो। हारून ने सरजनिश की, सर ताबी की मजाल किस्में थी। वो खजिल लुस्सा होकर अपना किस्सा आप ही कहने लगा, आलिजा, इस रोज़ मैंने खाने के साथ पनीर भी खाया था, शायद इसका कोई रेजा मेरी दाढ़ी में अटका रह गया था, लेकिन मुझे इसकी खबर नहीं थी। शोमी किस्मत के बालोर इस तरफ आ निकला और मुझसे पूछने लगा, मुशीर साहब, आज आपने नाश्ते में क्या तनावुल फरमाया है? मैंने हंसी हंसी में कह दिया, मैंने कबूतर खाया है। तो वो कहने लगा, तभी इसकी बीट आपकी रेशे मुबारक में अटकी हुई नज़र आ रही है। हारून बेसाख्ता हंस पड़ा, वल्ला कैसा मस्करा है ये बहलूल, कल उसे दरबार में तलब करो, हम खुद इससे बात करेंगे। नंबर 9, अगले रोज़ बहलूल दरबार में हाजिर था। हारून अपने ज़र निगार तख्त पर शाही लिबास पहने बड़ी तमकिनत से बैठा हुआ था। बहलोल अपनी बोसीदा पापोश और पेवन लगी गुदड़ी के साथ उसके हुजूर पेश किया गया। हारून ने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली और खशमगीन लहजे में बोला, बहलोल, तू बहुत होशियार बनता है, लेकिन हमें पता है कि तू हुकूमत के बागी मूसा बिन जाफर के दोस्तदारों में से है, उन्हीं के हुक्म पर तू दीवाना बना हुआ है ताकि अवाम को उनकी तरफ मुतवज्जा करके हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दे। तू समझता है कि पागल होने की वजह से तेरी कोई पूछगछ नहीं होगी, लेकिन याद रख कि हुकूमत तेरी तरफ से गाफिल नहीं है, तेरी सब सरगर्मियों की खबर हमें बराबर मिलती है। बहलोल ने मज़ेका खेज सूरत बनाई, जाहिर है कि तुम्हारे नमक हलाल। शिकारी कुत्ते सही इतला ही लेकर आए होंगे, तो अब खलीफा मुझसे कैसा सुलूक करेगा। भरे दरबार में मजाक उड़ाने पर हारून को और तैश आया, तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम दूसरों के लिए नमूना इबरत बन जाओगे। इसने गुस्से से कहा और अपने गुलाम को पुकारा, मसरूर ले जाओ इस गुस्ताख को, इसके कपड़े उतार लो और इस पर गधे का पालान डाल दो, इसके मुंह में लगाम दो, इसे महल और हरम सरा में फिराओ और इसके बाद मेरे सामने इसका सर पुर गुरूर उड़ा दो। दरबार में सन्नाटा छा गया, दरबारी हैबत शाही से कांप गए, लेकिन बहलोल शाह ने बेनियाजी से खड़ा मुस्कुराता रहा। मसरूर आगे बढ़ा और इसने बहलोल की गुदड़ी घसीट कर परे उछाली, इसका बोसीदा लिबास नोच कर इस पर गधे का पालान कस दिया, इसके मुंह में लगाम दी और इसे खींचता हुआ महल और हरम सरा की तरफ ले गया। शाही दरबारों और महल सराओं में इंसानियत की तजलील रोज़ का मामूल है, इसलिए बहलोल की इस हयत कजाई पर किसी को ताजुब नहीं हुआ। महल और हरम सरा के मकीन इंसानियत की इस तौहीन को तमाशे की तरह देखते रहे। किसी ने सोचा कि बहलोल तो दीवाना है, इसलिए सज़ा का मुस्तजब नहीं, लेकिन जान के खौफ ने जबानों को बंद कर रखा था, कोई कुछ ना कह सका। मसरूर उसकी लगाम खींचता उसे दरबार में वापस ले आया और हारून के सामने अदब से झुककर बोला, आलीजा आपके हुक्म की तामील हुई, क्या इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हारून ने अभी जवाब नहीं दिया था कि नागा इसका वजीर जाफर बरमकी दरबार में दाखिल हुआ। इसने हैरत से बहलोल की हालत देखी और बोला, बहलोल खैरियत तो है, ऐसा क्या कसूर हो गया कि तुमसे जो ये हालत बनी है। बहलोल मुस्तहसा, जनाबे आली ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेरी गर्दन भी मारी जाएगी, मगर किस जुर्म में। जाफर बरमकी ने पूछा, मैंने एक सच्ची बात कह दी थी जिसके इनाम में खलीफा ने मुझे ये खिल्लत फाखरा अता की और जाम मर्ग मेरा इंतज़ार कर रहा है। हारून को बेसाख्ता हंसी आ गई। खलीफा को हंसते देखकर दरबारी और जाफर बरमकी जो अपनी हंसी जब्त कर रहे थे वो भी हंस पड़े। हारून का गुस्सा काफूर हो गया और उसने शाही हुक्म जारी किया, जैसी बहलोल ने कही है इसे वैसे ही खिल्लत फाखरा अता की जाए। खलीफा के इस कर्म का शुक्रिया, मुझे अपनी पेवन लगी गुदड़ी ही गनीमत है। बहलोल अपनी गुदड़ी शाने पर डाल ली, बहलोल को दरहम दिनार अता किए जाए। शाही फरमान जारी हुआ, नहीं मुझे अहले जहन्नुम की पेशानी और पुश्तूनों पर लगने वाली मोहरों की ज़रूरत नहीं। बहलोल चलने पर तैयार हो गया। हारून ने उसे रोका, बहलोल अगर तुम इस इनाम और इकराम को अपने इस्तेमाल में नहीं लाना चाहते तो गरीबों और मोहताजों में बांट देना, इनका भला हो जाएगा। बहलोल रुक गया और इसने रकम की थैलियां गुलाम से ले ली। चंद कदम चला और रुक गया, कुछ सोचने लगा, फिर आगे बढ़ा और रुक गया, फिर कुछ सोचा और वापस पलट आया। इसने रकम की थैलियां हारून के सामने ढेर कर दी और बोला, हारून मैंने बहुत सोचा कि इन अशरफियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, लेकिन मुझे तुझसे ज़्यादा मुस्तहिक कोई और नज़र नहीं आया, तुझसे ज़्यादा नादार और ज़रूरतमंद शायद और कोई नहीं, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ कि तेरे कारिंदे हर जगह लोगों को कोड़े मार मार कर इनसे टैक्स वसूल करते हैं ताकि तेरे खजाने पुर हों। सारे शहर में सबसे बड़ा ज़रूरतमंद तो तू खुद है, इसलिए ये रकम तू ही रख ले। खलीफा दम बखुद रह गया, अहले दरबार सन्नाटे में आ गए। बहलोल के अंजाम को सोचकर इनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बहलोल इत्मीनान से चल खड़ा हुआ, रोको रोको इस दीवाने को रोको। अचानक खलीफा हारून की आवाज़ गूंजी। अहले दरबार इस तसव्वुर से ही काम गए कि बहलोल का इताब शाही से बचना महाल है। दो गुलाम तेज़ी से आगे बढ़े और बहलोल को घसीट कर हारून के सामने ले आए। हारून की आंखें नम थी और पेशमानी ने इसकी आवाज़ को पस कर दिया था। वो गहरी सांस लेकर बोला, बहलोल तेरी दीवानगी हम जैसे होशमंदों के लिए एक नेमत है, तेरी इस बात ने मेरे दिल को नरम कर दिया। मेरा जी चाहता है कि तुझसे कुछ पंदो नसीहत की फरमाइश करूँ। ग़ुलामों ने फौरन ही बहलोल को छोड़ दिया, वो अपनी मखसूस शान बेनियाजी से गोया हुआ। हारून पिछले खलीफों के महलों और इन कब्रों को देखकर इबरत हासिल कर, तू खूब जानता है कि ये लोग अरसे दराज तक इन महलों में ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते रहे और अभी इन कब्रों में पड़े पछताते और अफसोस करते हैं कि काश उन्होंने अपनी आखरत के लिए कुछ नेक अमाल अपने साथ ले लिए होते हैं, मगर अब इन्हें इस पछतावे से कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम सब भी जल्द या बदेर इसी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, जब ये शाही रूब और दबदबा और शान और शौकत कोई काम न नहीं देगी। हारून पर कपकपी सी तारी हो गई, मुतासिफ लहजे में बोला, बहलूल कुछ ऐसे अमाल बता जिनके बजा लाने से अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, इसकी मखलूक को खुश कर, वो तुझसे राज़ी हो जाएगा। बहलूल ने जवाब दिया, अब इसकी तदबीर भी बता दो कि खुल्क खुदा को किस तरह खुश रखा जा सकता है। हारून ने पूछा, अदल व इंसाफ में सबको बराबर का दर्जा दो, जो अपने लिए मुनासिब नहीं समझते दूसरों को भी इसका मुस्तहिक ना समझो, मजलूम की फरियाद तवज्जो से सुनो और इंसाफ से फैसला करो। बहलूल ने बुर्दबारी से कहा, आफरीन सद आफरीन बहलूल, मरहबा तुमने कैसी हक बात कही है। मरहबा, हारून ने तौसीफी लहजे में कहा, इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले दरबारियों ने भी नारे हाय तहसीन बुलंद किए। हारून ने हुक्म शाही जारी किया, हुक्म दिया जाता है कि शाही खजाने से बहलूल के तमाम कर्ज अदा कर दिए जाए। हारून कर्ज से भी कभी कर्ज अदा हुआ है, बहलूल ने उसे मुखातिब करके कहा, शाही खजाने में जो कुछ है वो आवाम का माल है और खलीफा पर कर्ज है, तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि आवाम का कर्ज उन्हें लौटा दो, मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए। तो फिर बहलूल कोई तो ख्वाहिश करो, मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई आरजू पूरी करूँ। हारून ने जोर देकर कहा, तो फिर मेरी ख्वाहिश और आरजू यही कि मेरी नसीहतों पर अमल करो, लेकिन अफसोस कि दुनिया की शान और शौकत और इख्तदार का नशा बहुत जल्द मेरी इन नसीहतों को फरामोश करा देगा। ये कहता वो दरबार से बाहर निकल गया। हारून और अहले दरबार झुके हुए सरों के साथ खामोश बैठे रह गए। नंबर 10, बहलूल अपने वीरान खंडर में वापस आया तो देखा इसमें कदमों के निशान हैं। यूं मालूम होता था जैसे कोई यह आया है। इसने फौरन एक खास जगह पर देखा, ताज़ा खुदी हुई मिट्टी जिसको हमवार किया गया था, बता रही थी कि इसका अंदेशा दुरुस्त था। इसने अपनी छड़ी से मिट्टी को हटाया, इसकी जमा शुदा रकम गायब थी। बहलूल कुछ रकम किसी हंगामी ज़रूरत के लिए मिट्टी में छुपा कर रखता था, गालबन किसी ने इसे रकम छुपाते हुए ताड़ लिया था। उसने अपनी गुदड़ी उठाई और चल पड़ा और नज़दीकी वाकई मूची की दुकान पर पहुंचा और बड़ी खुशतबी से उसे सलाम किया, आओ आओ बहलूल कैसे आना हुआ। मूची ने खुशी से पूछा, मैंने सोचा कि तुमसे मिलाऊं, फिर तुमसे एक काम भी है। बहलूल ने कहा, कैसा काम। मूची ने पूछा, तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझ जैसे दीवाने के साथ भी खुश अखलाकी से पेश आते हो, मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। बहलूल ने कहा, ये तुम्हारी मेहरबानी कि तुम ऐसा समझते हो। मूची ने खुश होकर कहा। बहलूल ज़रा करीब हुआ और बोला, तुम तो जानते हो कि मैं वीरानों खंडरों और खाली मकानों ही में रहता हूँ, मैं जहाँ भी रहा वहाँ थोड़ी बहुत रकम अपने बुरे वक्त के लिए बचाकर ज़मीन में दफन कर दी, तुम ज़रा हिसाब लगाकर मुझे बता दो कि ये रकम कुल कितनी होती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बताओ मैं हिसाब कर देता हूँ, मूची ने फराग दिली से कहा। खुदा तुम्हारा भला करे, शहर के मशरकी गोशे में जो खंडर है वहाँ मैंने शायद 100 सिक्के दबा रखे हैं, कब्रस्तान में तकरीबन 250 सिक्के होंगे और एक मकान के सहन में तो पूरे 500 हैं। हाँ याद आया, नहर के किनारे भी 50 सिक्के दफन हैं, तो ये सब मिलाकर कुल कितने हुए। बहलोल ने पूछा, अगर ये सिक्के सोने के हैं तो इनकी मालियत 2000 के लगभग ज़रूर है। मोची ने हिसाब लगाकर बताया। बहलूल कुछ देर सोचता रहा, फिर सर उठाकर बोला, यार मैं चाहता हूँ कि इन सब जगहों से वो तमाम सिक्के निकाल लूँ और इस वीराने में छुपा दूँ, यहाँ आमदोरफ्त कम है, मेरा ख्याल है ये जगह ज़्यादा महफूज है। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, तमाम रकम एक जगह रखो ताकि जब ज़रूरत पड़े तो निकालने में आसानी हो। मोची ने दिली दिल में खुश होते हुए मशवरा दिया। बहलूल अपनी छड़ी के सहारे उठा, अच्छा तो भाई मैं चलता हूँ, आज ही ये काम कर लूँ तो अच्छा है, सारे सिक्के निकाल कर ले आऊँ और यहाँ गाड़ दूँ, मेरे लिए दुआ करना। हाँ जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। मोची ने उसे अलविदा कहा। वो चला गया तो मोची ने सोचा कि इसने बहलूल के जो सिक्के ज़मीन खोद कर चुराए थे इन्हें वापस रखा है ताकि जब बहलूल अपने बाकी सिक्के लेकर आए तो इसे शक न हो और वह अपनी बाकी दौलत भी यहाँ गाड़ दे, इसके बाद वो मौका देखकर सारी रकम निकाल लेगा। वो जल्दी से गया और इसी जगह बहलूल की रकम दबाकर वापस आ गया। बहलूल कहीं शाम को वापस आया, इसने मिट्टी हटाकर अपनी रकम निकाली और वो वीराना छोड़कर चला आया। मोची बेचारा इसका इंतज़ार ही करता रह गया। वो अपनी रकम निकाल कर इस वीराने से निकला और कोई दूसरा ठिकाना तलाश करने लगा। इत्तेफाकन इसे एक शिकस्ता मकान नजर आया जो खाली पड़ा था। तमाम शहर जानता था कि वो वीरानों से मानूस है और ऐसी जगहों पर रहता है, इसलिए अमूमन कोई इससे तारुज नहीं करता था। इसकी बेसरो सामानी इसका असासा थी। इसने शिकस्ता मकान का एक गोशा साफ किया और वहीं डेरा जमा लिया। अभी उसे वहाँ बसेरा किए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई कि टूटे हुए दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसने सलाम किया और बोला, वाह वाह बहुत खूब, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बहलूल जैसा नामवर शख्स मेरा नया किरायेदार है। बहलूल सीधा हो बैठा, मुझे भी इस आलीशान मकान के मालिक से मिलकर बेहद खुशी हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप इस माह का किराया अदा कर देंगे, मालिक मकान ने कहा। बहलूल ने मकान की लरसती हुई छत और शिकस्ता दीवारों की जानिब इशारा किया। जनाब ने अपने इस शानदार महल की हालत मुलाहिजा फरमाई कि जरा सी हवा चले तो इसकी छत और दीवारें बोलने लगती हैं। बेशक बेशक आप दुरुस्त फरमाते हैं। आप जैसा बुजुर्ग ये भी जानता होगा कि तमाम मौजूदात आलम खुदा की हमदो सना करते हैं। ये जो आवाज़ आप सुनते हैं ये इस मकान के तस्बीह करने की सदा है। वो बोला, बहलूल ने अपना असर संभाला और फौरन ही उठ खड़ा हुआ और बोला, हजरत आप जैसे दानिशमंद इंसान को ये तो मालूम होगा कि मौजूदात हम तो सना और तस्बीह और तहलील के बाद सजदा भी करते हैं, और मैं आपके इस मकान के सजदा करने से पहले ही यहाँ से रुखसत होना हो जाना चाहता हूँ। उसने गुदड़ी संभाली और मकान से बाहर निकल आया। हारून ने अपनी सी बहुत कोशिश की है किसी तरह बहलूल पर गिरफ्त की जा सके, लेकिन इसकी हाजिर दिमागी, इसकी पूरी हिकमत गुफ्तगु और आवाम के साथ इसकी कुर्बत ने इसे इसका मौका नहीं दिया। वो अपने जासूसों को इसके पीछे लगाए रखता ताकि इसकी सरगर्मियों से बाखबर रहे। किसी वक्त सख्ती से इसकी बात पुरुष करता, लेकिन अक्सर मौक़ों पर बहलूल ही काम आता। एक बार एक सैयाह बगदाद में आया, उसने घाट घाट का पानी पिया था, मुल्कों मुल्कों घूमा था। जब वो हारून के दरबार में हाजिर हुआ तो इसने खलीफा के वजीरों और दानिशवरों से कुछ सवालात किए, लेकिन कोई भी उनका जवाब ना दे सका। हारून अपने मुकर्रबीन की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। सैयाह रुखसत हुआ तो वह अपने वजीरों और मुशीरों पर बरस पड़ा, तुम सब लोग मेरे लिए बायसे नंगो आर हो। आज इस सैयाह ने तुम्हें कैसा आजिज किया, यूं मालूम होता था जैसे तुम इसके मुकाबले में तिफले मकतब हो। दरबारियों के सर शर्म से झुक गए, इनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इताब शाही और जोश में आया, कल इस सैयाह को दरबार में तलब किया जाएगा। अगर तुम लोग इसके सवालों के जवाब ना दे सके तो तुम्हारी सब जायदाद और माल और दौलत इसके हवाले कर दिया जाएगा। हारून ने दरबार बर्खास्त किया और दरबारियों में खलबली मच गई। इनकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह के इताब से क्यों कर बचा जा सकता है। आखिर एक शख्स को अचानक याद आया और खुशी से बोला, दोस्तों इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास बहलूल जो मौजूद है, मुझे यकीन है कि वो सैयाह को लाजवाब कर देगा और इसके सब सवालों के जवाब ठीक ठीक देगा। बाकी सब लोगों की भी जान में जान आई और वो सब मिलकर बहलूल के पास पहुँचे। इसे तमाम माजरा सुनाया तो इसने इन्हें तसल्ली दी कि वो अगले दिन दरबार में पहुंचकर सैयाह के सवालों के जवाब ज़रूर देगा। अगले रोज़ दरबार आरास्ता हुआ। वजीर, अमीर, मुशीर, जरीम कुर्सियों पर बैठे। हारून अपने जर निगार तख्त पर मुतमक्किन हुआ। सैयाह को भी एक कुर्सी पेश की गई। हारून ने अहले दरबार पर निगाह डाली और बोला, तुम में से कौन है, कौन इस मौजूद सैयाह के सवालों का जवाब देगा। अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ देखा कि बहलूल का नाम किस तरह लें, कहीं इसका नाम हारून पर नागवार न गुजरे। कि इसी वक्त बहलूल की आवाज़ गूंजी, ये दीवाना हाजिर है, अहले दरबार को जहमत करने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी लाठी पटकता गुदड़ी शाने पर डाले दाखिले दरबार हुआ और सैयाह के करीब जा बैठा। हारून कुछ हिचकिचाया, लेकिन पहलू में बैठे हुए वजीर ने इसके कान में कुछ कह दिया जिससे इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आई। सैयाह ने बहलूल की हैयत एक कजाई की तरफ देखा और कदर ताजुब से बोला, क्या मैं आपसे सवालात करूँ। बसर व चश्म, बहलूल ने मुस्तैदी से जवाब दिया। वो सैयाह उठा और अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलूल ने फौरन ही उठकर अपने असा से इस दायरे के दरमियान में एक लकीर खींचकर इसे दो हिस्सों में बांट दिया। सैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और इसने एक और दायरा खींच दिया। बहलोल ने इस मरतबा दायरे को चार हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर छड़ी रखकर खटखटाई। सैया ने कदरे हैरत से इसकी तरफ देखा और ज़मीन पर अपना हाथ उल्टी तरफ रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलोल ने उठकर अपना हाथ जमीन पर इस तरह रखा कि इसके हाथ की पुष्ट ऊपर थी। सैया अपनी नशीस पर आ बैठा और तौसीफी लहजे में बोला, मरहबा आफरीन आलीजा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके यहाँ ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर की जानी चाहिए। क्या बहलोल ने तुम्हारे सब सवालों के जवाब ठीक ठीक दिए हैं? यकीनन इसने किसी बहुत अजीम दरसगाह से तालीम हासिल की है जो इसके पास इतना इल्म है कि ये मेरे इशारे फौरन समझ गया है, सैया बोला। बहलोल मुस्कुराया, इस अजीम दरसगाह का नाम मत पूछना क्योंकि इसे सब जानते हैं। बहलोल का इशारा सब समझ रहे थे लेकिन सैया कुछ नहीं समझा और चाहता था कि कोई सवाल करे कि हारून ने फौरन पूछ लिया, अगर तुम इन इशारों को ज़रा खोल कर बयान करो तो अहले दरबार भी महजूज हो सकेंगे और सीख भी लेंगे। सैया बोला, आपने देखा कि मैंने ज़मीन पर दायरा खींचा था, मेरा मकसद ज़मीन का कुर्रा दिखाना था। आपका आलिम फौरन समझ गया और इसने दायरे के दो बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि वो ज़मीन के गोल होने पर यकीन रखता है और इसके इसरार और रमूज से भी वाकिफ है। इसने इस लकीर से खत इस्तवा को दिखाया जिससे ज़मीन शुमाली और जुनूबी कुर्रे में बढ़ गई। फिर मैंने देखा कि मैंने एक और दायरा खींचा, आपके आलिम ने इसके चार हिस्से करके मुझे समझा दिया कि ज़मीन में तीन हिस्से पानी और एक हिस्सा खुश्की है, और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया तो इसने बारिश और सूरज की निशानदेही की जो नबातात की बालिदगी और नशोनुमा का ज़रिया है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फख्र करना चाहिए।